अध्याय 16 कलीसिया की वृद्धि के कार्य। एक स्वर्गीय योजना। परमेश्वर की यह योजना बिल्कुल भी नहीं है कि उसके लोग बड़े बड़े समूह बनाकर एक जगह एकत्र होकर एक बड़ा समाज बनाएं। प्रभु के चेले उसके प्रतिनिधि हैं जो इस पृथ्वी पर हैं, और परमेश्वर ने चाहा है कि वे सारे देश में फैल जाएं, कस्बों में, शहरों में, गांव में चले गए हैं। जिस प्रकार जगत के अंधकार में ज्योति बड़े बड़े बनाने की योजना, या अलग अलग स्थानों पर कूच करके अन्यत्र जाना जहां कमजोर और कम प्रभावशाली लोग हैं, और ज्यादा ध्यान उन पर देना जहां ज्यादा घनी आबादी है, ये ऐसे काम हैं जो बताते हैं कि प्रभु की ज्योति वहां से हटाई जा रही है जहां परमेश्वर चाहता है कि उसकी रोशनी चमके। यदि प्रभु के लोग उसके उद्देश्य को पूरा कर रहे थे तो प्रभु के जीवन की रोशनी उन अंधकार से भरे स्थानों और राज्यों से मौत के अंधकार को दूर कर देते। एक साथ मिलकर सभा करने के बदले अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाने और क्रूस को उठाने के बदले, यदि कलीसिया के सारे सदस्य जगह जगह चले जाएं और प्रभु के जीवन की ज्योति बिखेरें, ठीक उसी प्रकार काम करें जैसे मसीह यीशु ने किया था लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए, और ये स्वर्ग राज्य का सुसमाचार बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैला दिया जाता। भाइयों और बहनों, तुम क्यों केवल कलीसिया के बारे में ही सोचते हो? जाओ, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत पढ़ो, सच्चे चरवाहे के समान निकल पड़ो उसे खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए जो पाप के जंगल में खो गई है। नाश होने वाली उन आत्माओं को बचाओ। कलीसिया के लोगों को काम अभी तक पूरा कर लेना चाहिए था जिसे उन्होंने अभी तक प्रारंभ ही नहीं किया। किसी को भी नई जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां शायद वे सांसारिक लाभ की खोज में जाते हैं, किंतु वहां जीविका कमाने के साधन प्राप्त हों। वहां एक या दो परिवार जो सच्चाई में सुदृढ़ हैं जाकर सुसमाचार प्रचार कार्य कर सकते हैं। उनमें आत्माओं के प्रति प्रेम महसूस करना चाहिए, एक बोझ महसूस करना चाहिए, उनको बचाने का बोझ, और अच्छी तरह तैयारी कर उन्हें सत्य की पहचान कराना चाहिए। इसके लिए वे पत्रिकाएं व किताबें बांट सकते, घरों में सभाएं कर सकते, उनके पड़ोसी से मिल सकते, उन्हें भी अपनी सभाओं में निमंत्रण दे सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी रोशनी अच्छे कामों को कर दिखा सकते हैं। भाइयों, आप जो अपना स्थान बदलना चाहते, जो प्रभु की महिमा को देख सकते और ये महसूस करते कि प्रत्येक के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि दूसरों की भलाई करें, उन्हें लाभ पहुंचाए, और जिम्मेदारी है कि दूसरों की भलाई करें, उन्हें लाभ पहुंचाए और उनकी जान बचाएं, जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान को भी नहीं रख छोड़ा, ऐसों के लिए कस्बों व गांवों में निकल जाएं जहां थोड़ी या नहीं के बराबर सच्चाई की पहचान है, और जहां वे लोगों के लिए सच्चे सेवक और आशीष का कारण ठहर सकते हैं। उनके लिए परिश्रम करने के द्वारा और अपने अनुभव उन्हें बताकर सच्चाई में ला सकते हैं। प्रचार सहायक व सेवक कस्बों व गांवों में जाकर सत्य को ऊंचा उठा सकते हैं, जिससे प्रभु की गवाही पूरे देश में हो सके, ताकि प्रभु की रोशनी अंधकार को चीरते हुए वहां पहुंच। आज तक घोर अंधकार था, रोशनी की जानकारी ही नहीं थी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो स्वेच्छा बलिदान की चाह को जागृत करें और चरित्र को विकसित कर ताकतवर बनाए, ताकि वह दूसरों के लिए काम करने में समर्थ हो सकें। कई दृढ़ प्रतिज्ञ मसीही कलीसिया से संबंध जोड़ने के लिए केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। वे केवल कलीसिया का साथ और पादरी के द्वारा उनकी चिंता किया जाना पंसद करते हैं। बड़े वे समृद्ध कलीसियाओं के सदस्य बन जाने और थोड़ा बहुत दूसरों के लिए करके संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार अपने आप को उन सर्वाधिक बहुमूल्य आशीषों से दूर कर रहे हैं। कई लोग तो काफी लाभान्वित भी हो गए अपनी खुशियों का, तथा आसानी से मिलने वाला एक दूसरे का साथ से उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां उनकी ताकत का उपयोग मसीही कामों में किया जा सकता है, और साथ ही वे जिम्मेदारी निभाना भी सीख सकते हैं।
ऐसी हजारों जगहों में जाने की जरूरत है जहां सच्चाई का मान अभी तक नहीं बढ़ा है, जहां सच्चाई का बिगुल कभी नहीं गूंजा, और वो देश अमेरिका है। और वहां हजारों लोग ऐसे हैं जो फसल बटोरने के लिए खेतों में आ जाएंगे और जो अभी धार्मिकता के लिए कुछ नहीं करते और परिणाम स्वरूप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए लंगड़ाकर चलते हैं। इस संदेह में कि क्या वे मसीही है यीशु के साथ मजबूत संबंध बनाने की, तभी ये कहा जा सकेगा तुम प्रभु के साथ परिश्रम में सहभागी हो। मैं कई लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई आए और तुम्हें उठाकर प्रभु की बारी तक ले जाएं और तुम्हें काम पर लगाएं, या तो प्रभु की बारी को उठाकर तुम्हारे पास ले आएं जिससे तुम्हें परिश्रम करने में ज्यादा तकलीफ न झेलना पड़े। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ है। यदि तुम अपनी आंखें ऊपर उठाओ तो देखोगे कि फसल पक गई है, हसुआ लगाने के लिए तैयार है। जिस भी ओर से तुम देखोगे तुम्हें काम या तो पास फिर दूर नजर आएगा। परंतु प्रभु कितनों को न्याय के समय कहेगा भले और वफादार सेवक? मुझे लगता है कि इस अंत समय में स्वर्गदूत क्या महसूस करेंगे ये देखकर कि मनुष्यों का अंत निकट है। वे जो ये कहते हैं कि वे परमेश्वर को और प्रभु यीशु को उसने भेजा जानते हैं, वे भीड़ को और प्रभु यीशु को जिसे उसने भेजा जानते हैं। वे भीड़ लगाते, नई बस्तियां बसाते, सभाओं में सम्मिलित होते और जब उनके सब प्रयास विफल होते तो असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। यदि उनकी सांसारिक रुपये पैसे संबंधी इच्छाएं विभिन्न स्थानों में घूमने से भी पूरी नहीं होती जहां अभी तक सच्चाई का प्रचार है, तो लेकिन उसकी वृद्धि हुई ही नहीं। क्या वे वही कार्य नहीं करेंगे जो प्रभु यीशु ने उन्हें बचाने के लिए किया? हम देखते हैं कि प्रचार कार्य करने का काम सच्चाई को विदेश में ले जाना ही नहीं है, बल्कि उनके पास भी जो करीब है। हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से शहर और नगर हैं जिनमें आत्माओं को बचाने के लिए परिश्रम किया ही नहीं गया। वे परिवार जिन्हें सच्चाई का ज्ञान है, वर्तमान सत्य को जानते हैं, वे जाएं इन शहरों व कस्बों में जाकर बस जाएं और वहां प्रभु यीशु के बारे में बताएं, नम्रतापूर्वक काम करें, अपनी तरह से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन लोगों को ज्योति में लाएं जिन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब कलीसिया वास्तव में संदेश देने वाली आत्मा पा लेगी तभी वे अपनी सारी ताकत इस काम को करने में लगा देगी कि आत्माओं को बचाएं। जिनके लिए प्रभु यीशु ने अपनी जान दी वे एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कुछ जो अभिषिक्त सेवक नहीं हैं वे परमेश्वर के साथ कलीसिया से मिलेंगे तथा उन्हें जो बाकी बचे हैं सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेंगे और जो खत्म होने पर हैं उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। सामान्य लोग भी शहरों व कस्बों और शायद उन अलग थलग स्थानों में भी जाएंगे जहां प्रभु की ज्योति चमका सकें। कुछ लोग जिनसे वे जहां प्रभु की ज्योति चमक सकें, कुछ लोग जिनसे वे मिलेंगे, हो सकता है उनमें से कोई भी उतना विशेष ध्यान देने वाला न हो। फिर भी ये देखना होगा कि कौन है जो प्रभु यीशु के साथ जुट जाएंगे। क्या वे उसकी आत्मा को ग्रहण करेंगे जिससे कि उनका प्रभाव उनके समझ में और प्रमाण द्वारा वे अपने आप को सत्य और धार्मिकता के प्रवर्तक के सामने प्रस्तुत करेंगे। उन स्थानों पर जहां अभी तक सच्चाई नहीं पहुंच पाई है उन भाइयों ने काम को अपने हाथों में लिया है और वे उसे पूरा करने के लिए हॉल किराए पर लेते और वे उचित स्थान जहां लोगों को एकत्र किया जा सके और जहां लोगों को अधिक से अधिक लोग आ सकें। तब उन्हें लोगों को सच्चाई के प्रति सचेत करें, उन्हें धर्म उपदेश नहीं दें बल्कि बाइबल ले जाकर परमेश्वर के वचन से सीधे उनसे बातचीत करें। यदि वहां कम लोग भी उपस्थित हों तो यहोवा की यही वाणी है, बिना किसी बड़े दिखावे या उत्तेजना के कह सकेंगे। तब उस वचन को पढ़कर सरल शब्दों में सच्चाई का सुसमाचार समझाएंगे और उनके साथ भजन गाएं व प्रार्थना करें। अब्राहम एक श्रेष्ठ उदाहरण। अब्राहम की परीक्षा कोई आसान नहीं थी जो उस पर आई थी, ना ही उससे कोई साधारण बलिदान मांगा गया था। उसे बहुत मजबूती से अपने राष्ट्र, जाति व लोगों से जुड़े रहना था, किंतु वह उस बुलावे को मानने से पीछे नहीं हटा। उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश के बारे में कोई प्रश्न भी नहीं किया कि वह वहां की भूमि उपजाऊ है कि नहीं, या वहां का मौसम स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं, या देश उपयुक्त वातावरण से घिरा है या नहीं, तथा वह क्षेत्र धन धान्य से परिपूर्ण होने के अवसर प्रदान करेगा कि नहीं। प्रभु ने कहा और उसके सेवक ने आज्ञा मानी और निकल पड़ा। क्योंकि पृथ्वी के तरह परखे जाते हैं, उन्हें परमेश्वर की आवाज स्वर्ग आती हुई सुनाई देती, किंतु वह उन्हें बाइबल भी शिक्षा जो उसके वचन से मिलती है और कुछ होने वाली घटनाओं का परिणाम होता है। हो सकता है कि उन्हें अपना सब कुछ जो उन्हें धन व सम्मान दिला सकता है छोड़कर, आसान व फायदेमंद संगठन को छोड़कर और अपने प्रिय लोगों को चाहता है, किंतु जीवन की सुविधाएं, मित्रों का प्रभाव तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां इस कार्य की प्रगति में रुकावट बनते और जरूरी बातें जो इस काम को पूरा करने में बाधा उत्पन्न करती है। परमेश्वर उन्हें सभी मानवीय प्रभावों को जरूरत है ताकि परमेश्वर स्वयं को उन पर प्रकट कर सकें। कौन है जो तैयार है अपने पालन पोषण की योजनाएं और पारिवारिक संबंधों का त्याग कर इस बुलाहट के लिए आए? कौन है जो इन कर्तव्यों को स्वीकार करने अनजान स्थानों पर जाने, परमेश्वर का काम पूरी इच्छा व रुचि से करने के लिए यीशु की खातिर अपनी असफलताओं पर ध्यान देगा? वह जो यह करता है वही अब्राहम के जैसा भरोसा परमेश्वर पर रखता और अब्राहम की पीड़ाएं कुछ भी नहीं होगी। तू यहां क्या करता है? काफी कुछ उन लोगों की लगातार कोशिशों पर निर्भर करता है जो वास्तव में सच्चे और वफादार है, और इसलिए शैतान अपनी सारी ताकत इन आज्ञा मानने वालों के काम में विघ्न डालने के लिए लगा देता है। वह कुछ लोगों का ध्यान अपने ऊंचे व पवित्र से भटकाने में प्रयास करता है और उन्हें संसार के सुख विलास से संतुष्ट होने के लिए उकसाता है। वह उन्हें आराम से बैठने के लिए उभारता है और संसार के और अधिक लाभों की ओर ले जाता है, उन स्थानों से दूर ले जाता है जहां वे लोगों की भलाई कर सकते थे। दूसरों को वे निरुत्साहित कर काम छोड़कर भाग जाने पर मजबूर करता और विरोध और यातना देकर उन्हें काम करने से रोकने के क्या क्या प्रयास नहीं करता। किंतु प्रभु ऐसे सभी सताए जाने वालों पर दया करता है। प्रभु के हर उस बालक जिसकी आवाज शैतान दबाने में कामयाब हुआ है उससे यह प्रश्न है, तू यहां क्या करता है? मैंने तो तुझे जगत में जाने और प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, लोगों को प्रभु के दिन लिए भेजा था, लोगों को प्रभु के दिन के लिए तैयार करने को भेजा था। तू यहां क्यों है? तुझे किसने भेजा है? जैसे व्यक्तिगत रूप से वैसे ही परिवारों से भी यह प्रश्न है, तू यहां क्या करता है? कई कलीसिया में ऐसे परिवार हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वे अपने किए गए प्रयासों और प्रभाव से उन क्षेत्रों में जाकर जहां प्रभु के वचन की सेवकाई बाकी है उनकी सहायता कर सकते हैं। मसीही घरानों की बुलाहट। प्रचार कार्य करने वाले परिवारों की जरूरत है जो ऐसे बेकार स्थानों में जाकर बस जाएं। किसानों, वित्तीय सहायता देने वाले, निर्माणकर्ता और वे जो विभिन्न कला और कारीगरी में निपुण हैं, ऐसे तिरस्कृत स्थानों में जाएं। वहां जमीन तैयार करें, उद्योग धंधे स्थापित करें, अपने लिए साधारण से घर बना लें और अपने पड़ोसियों की सहायता करें। परमेश्वर सब मसीही परिवारों को उन सामाजिक वर्ग के पास जाने को कहते हैं जो गुनाहों और अंधकार में हैं। ऐसों के लिए बुद्धिमानी और उत्साहपूर्वक अपने गुरु के लिए काम करें। इस बुलाहट के जवाब के लिए स्वेच्छा बलिदान आवश्यक है। जबकि कई लोग रुकावटों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्माएं बिना आशा और बिना प्रभु के मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। कई ये केवल सांसारिक लाभ के खातिर, कई वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान की खोज में ऐसे स्थानों में चले जाते हैं जो खतरे से खाली नहीं होते, महाकठिनाइयों और अन्य व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। वे लोग कहां हैं जो लोगों की खातिर काम करने के लिए प्रभु का वचन और स्वयं प्रभु के बारे में प्रचार करने में लगे हैं? वे स्त्री व पुरुष कहां हैं जो धर्म की ओर फिरेंगे, जो सुसमाचार के लिए जरूरी है, ताकि जो अंधकार में हैं उन्हें उद्धारकर्ता के पास ला सकें? ऐसे परिपूर्ण परिवार भी हैं जो सबके सब सदस्य मिलकर प्रचारक हो सकते हैं। स्वयं प्रयास करें, अपने हाथों का काम में व्यस्त रखें, मन मस्तिष्क को सक्रिय रखें तथा नई नई सफलता के तरीके खोजें प्रभु का काम सफल बनाने के लिए। यदि पूरा परिवार जगत के ऐसे स्थानों में जाकर बसे जहां लोगों में धार्मिकता के नाम पर अंधकार छाया हुआ है, उन लोगों पर प्रभु यीशु के जीवन की रोशनी चमकाए तो काफी काम कर सकते हैं। उन्हें अपना प्रचार कार्य शांति से शुरू करना चाहिए, बलपूर्वक उन्हें सम्मेलन के लिए धन देने के लिए ना कहें, जब तक कि उनमें स्वयं रुचि इतनी तीव्र रूप से ना हो कि वे अपने आप को प्रभु की महिमा करने, सहायता करने से रोक ना सकें। बीज बाने के लिए बुद्धिमान बागवान की आवश्यकता। कामगारों को तैयार करो कि वे चौड़े चौड़े राजमार्गों और गलियों में निकल जाएं। हमें बुद्धिमान बागवानों की आवश्यकता है जो वचन का बीज हर एक बस्ती में जाकर बोएं और उनका पोषण करें कि वे वृद्धि करें। ये लोगों की सम्मति से किया जाने वाला काम है कि प्रभु के लोगों को अपने अपने संभाग से अलग स्थानों पर जाना चाहिए। एक सेना तैयार की जाए जो नए नए तरीकों से भूमि तैयार करें ताकि प्रभाव वाले नए केंद्र स्थापित किए जा सकें, जहां भी उनके खोले जाने की संभावना है। उन कामगारों को इकट्ठा करो जिनमें सुसमाचार प्रचार करने की सच्ची आत्मा और जोश हो। उन्हें दूर दराज और आसपास के इलाकों में भेज दो ताकि प्रभु की ज्योति व प्रभु का ज्ञान फैला सकें। अनेक बड़ी कलीसियाओं के लोग अन्य की अपेक्षा कुछ नहीं कर रहे हैं। वे एक जगह इकट्ठा होने के बदले आसपास के ऐसे स्थानों में फैल जाएं जहां सच्चाई का आगाज ही नहीं हुआ है। इकट्ठे लगाए हुए पेड़ कभी फलते नहीं है, वो बागवान के द्वारा इस तरह रोपे जाते हैं कि उन्हें बढ़ने के लिए जगह मिले, और पर्याप्त जगह न मिलने की वजह से वे छोटे और बीमार न हो जाएं। यही नियम हमारी बड़ी कलीसियाओं पर भी लागू होता है। कई लोग इसी कारण से आध्यात्मिक मौत से मर रहे हैं। जहां वचन के प्रचार की जरूरत है, वे लोग भी बीमार तथा आत्मिक रूप से अयोग्य हैं। यदि उन्हें वहां से हटाकर उस स्थान पर रोपा जाए जहां वे बढ़ सकते हैं, ताकतवर हो सकते और सामर्थ्य पा सकते हैं। परिणाम का निश्चय। यदि कलीसिया के सामान्य जन भी जागृत होते और प्रभु के इस काम को जितना वे कर सकते हैं करें, इस कार्य को युद्ध स्तर पर करने के लिए अपने आप को सामने लाएं और प्रत्येक ये देखे कि प्रभु यीशु के लिए आत्माओं को जीतने का काम पूरा कर सकते हैं, हम देखेंगे कि बहुत से लोग शैतान के ऊंचे स्थानों को छोड़कर प्रभु यीशु के झंडे के तले आएंगे। यदि लोग इन निर्देश के रूप में दिए गए शब्दों की रोशनी में होकर कार्य करेंगे तो हम अवश्य ही प्रभु का उद्धार देखने पाएंगे, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। पापी अपने पापों से फिर जाएंगे और अनेक आत्माएं कलीसिया से जुड़ जाएगी। हमारी कलीसिया के सदस्यों को घरेलू सेवकाई और बाहरी विदेशी सेवकाई दोनों में गहरी रुचि महसूस करना चाहिए। उन्हें बड़ी आशीषें मिलेंगी यदि वे आत्म बलिदान कर स्वेच्छा से नए इलाकों में सत्य का मान बढ़ाने का काम करते हैं। इस क्षेत्र में खर्च किया गया धन उनके लिए बड़ी आशीषें लाएगा। नए विश्वासी वचन की रोशनी पाकर खुशी से झूम उठेंगे और उनकी बारी आने पर वे भी अपने साधनों का उपयोग कर सच्चाई की मशाल से दूसरों को रोशनी करेंगे।
उन क्षेत्रों में जहां परिस्थितियां अनुकूल न होकर प्रतिरोधक और कठिन है, जिससे लोग वहां जाना पसंद ही नहीं करते, वहां पर यदि ये विशेष लोग अपनी स्वेच्छा से प्रयास करें तो उद्धार कार्यकर्ता काफी काम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे धीरजवंत लगातार प्रयास करने वाले मनुष्य की ताकत पर नहीं परंतु प्रभु पर भरोसा रखते, क्योंकि वही उनकी सहायता करता है। और ये सामान्य नम्र लोग जो काम पूरा करेंगे, जो भलाई से पूर्ण हैं, जगत के लोग कभी भी जानने न पाएंगे। प्राचीन इज़राइल की असफलता से सीख। जब इज़राइल कनान देश में प्रवेश किए तब उन्होंने प्रभु के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जो कि संपूर्ण इज़राइल पर अधिकार करना था। थोड़े से भाग पर जीत हासिल कर खुशियां मनाने लगे। उनके अविश्वास और आराम पंसदगी से वे एक ही जगह इकट्ठे हो गए जहां उन्होंने पहले से डेरा जमाया था। उन्होंने अपनी सीमा को आगे बढ़ाकर नए इलाके नहीं बसाए और इस प्रकार वे परमेश्वर से दूर होने लगे। अपनी नाकामयाबी जो उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करके की थी, उसके कारण वे परमेश्वर से वो सब आशीषें पाने में नाकामयाब रहे जो परमेश्वर ने वायदा किया था। क्या आज भी कलीसियाएं यही काम नहीं कर रहीं?
उनके सामने सारा जगत सुसमाचार प्रचार के बिना पड़ा है और वे एक जगह इकट्ठे होते जहां केवल वे ही सुसमाचार की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। वे नई जगहों पर जाने की जरूरत महसूस नहीं करते और न उद्धार के संदेश का दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने की जरूरत महसूस करते हैं। वे प्रभु यीशु के काम को पूरा करने से इनकार करते हैं, जाऊं जगत भर में फैलाऊं और सुसमाचार प्रचार हर एक प्राणी को सुनाऊं। क्या ये कम गुनाहगार है यहूदियों की कलीसिया से?